आज का पाठ थोड़ा पांडित्यपूर्ण पाठ है। अच्छे अच्छे लोग भी इस बात को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तो उसको आज हमें समझना है, मजा भी आएगा। ये पिछले पाठ में बात ये आई थी कि प्रत्यार्था प्रधानम जो कहा जाता है न्याय में, वह एक जनरल रूल है, सामान्य हर जगह वह लागू नहीं होता। कहाँ पर कौन विशेष बनेगा, कहाँ पर कौन प्रकार बनेगा, माने विशेषण बनेगा, यह बात किस पर निर्भर करती है, तो व्युत्पत्ति पर निर्भर करती है। जैसी व्युत्पत्ति जिसकी रहती है ना, उस तरह से वह जो है उसको विशेष का बोध होता है और विशेषण का बोध होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये व्युत्पत्ति के अनुरोध होता है, व्युत्पत्ति के आधार पर ये व्युत्पत्ति है क्या। तो व्युत्पत्ति जो है ना, यहाँ व्युत्पत्ति शब्द के कई तरह से अर्थ किए जाते हैं, प्रसंग पर उसका अर्थ बदलता रहता है। यहाँ जो व्युत्पत्ति बताई गई है, उस व्युत्पत्ति का तात्पर्य है संस्कार और अभ्यास। ये आचार्य की परंपरा से जब हम लोग पढ़ते पढ़ाते आते हैं, तो आचार्य परंपरा से पढ़ने पर जो जिस तरह का संस्कार माइंड में बैठ जाता है, मस्तिष्क में, और उसी तरह उसी संस्कार से जो है ना, हम बार बार उस चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, तो उससे जो एक संस्कार जो बैठ गया मस्तिष्क में, उसी संस्कार को यहाँ पर व्युत्पत्ति कहा गया। माने परंपरा के अनुरोध से जो बुद्धि में संस्कार बैठता है, मस्तिष्क में संस्कार बैठता है, उस संस्कार के आधार पर ही जो है यह निर्णय हो पाता है कि कौन विशेष बनेगा, कौन विशेषण बनेगा। अब ये जो इन्होंने कहा कि व्युत्पत्ति के अनुसार ये निर्भर करता है कि कौन विशेष होगा, कौन विशेषण होगा, इसको जो है ना थोड़ा सा शास्त्र की भाषा में अगर कहें तो कहेंगे व्युत्पत्त्यनुसारी बोधः न तु बोधानुसारिणी व्युत्पत्तिः। फिर से मैं बोलता हूँ, व्युत्पत्ति अनुसारी बोधः, माने व्युत्पत्ति के अनुसार बोध होता है। बोध होता है माने शाब्द बोध होता है, और शाब्द बोध में होता क्या है, कोई विशेषण होता है, कोई विशेष होता है, तो विशेष विशेषण वाला जो बोध होता है उसी का नाम है शाब्द बोध। तो व्युत्पत्ति अनुसारी बोधः, व्युत्पत्ति के अनुसार जो है शाब्द बोध होता है, न तो बोधानुसारिणी व्युत्पत्ति ही, शाब्द बोध के अनुसार व्युत्पत्ति नहीं होती है, बल्कि व्युत्पत्ति के अनुसार शाब्द बोध होता है। माने जिसकी जैसी सोच है, तो सोच में जिस तरह की व्युत्पत्ति रहती है, उस तरह से उसको जो है शाब्द बोध हुआ करता है। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, प्रमाणित करते हैं। कहते हैं कि अत एव मतलब व्युत्पत्ति के आधार पर ही शाब्द बोध होता है, विशेष विशेषण का निर्णय होता है, इसीलिए नई आई का नाम प्रथमांतार्थ विशेषक एव शाब्द बोधः। अब आप ये जानते हैं ना कि व्याकरणों के यहाँ कौन सा मुख्य विशेष बनता है शाब्द बोध में, व्यापार। मीमांसकों के यहाँ भी व्यापार ही मुख्य विशेष बनता है शाब्द बोध में, लेकिन न्यायिकों के यहाँ जो है क्या होता है मुख्य विशेष, प्रथमांतार्थ मुख्य विशेष होता है। अब क्यों जी, इसका कारण अगर कोई पूछे कि व्याकरण और मीमांसकों को जो है व्यापार मुख्य विशेषक शाब्द बोध होता है, और न्यायिकों को जो है प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शाब्द बोध होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि शब्द कान तो दोनों के पास है, न्यायिकों के पास भी और व्याकरणों के पास भी, सुनना एक ही तरह से है, जैसे व्याकरण सुनते हैं वैसे न्यायिक भी सुनते हैं, तो फिर बोध क्यों अलग अलग टाइप का होता है? व्याकरणों को के यहाँ व्यापार मुख्य विशेष बन जाता है और न्यायिकों के यहाँ प्रथमांतार्थ मुख्य विशेष बन जाता है, ऐसा कैसे क्यों होता है? तो इसका जवाब आप क्या देंगे, यही देंगे कि व्युत्पत्ति अनुसार ही शाब्द बोधा, व्युत्पत्ति के अनुसार शाब्द बोध होता है। तो व्याकरणों में और मीमांसकों में जो व्युत्पत्ति है, जो संस्कार है, उस संस्कार के कारण ही उन दोनों को व्यापार मुख्य विशेषक बोध होता है, और न्यायिकों में जो संस्कार बैठा हुआ है, व्युत्पत्ति बैठी हुई है, उस संस्कार के कारण ही जो है उनको प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शाब्द बोध होता है। तो ये इन्होंने एक उदाहरण दिया कि अतएव माने व्युत्पत्ति के अनुसार ही शाब्द बोध फाइनल होता है, इसीलिए न्यायिकों की चूंकि वैसी ही व्युत्पत्ति है और उसी व्युत्पत्ति से वो जो है ना प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शाब्द बोध मानते हैं। जैसे एक उदाहरण दे दूं, देवदत्तो गच्छति ये वाक्य है, इसमें प्रथमांत कौन है, तो देवदत्तः इसमें सुप्रथमा विभक्ति लगी हुई है ना, तो प्रथमांत कौन हुआ? देवदत्तः। प्रथमांत का अर्थ क्या हुआ? देवदत्त। तो इस देवदत्तो गच्छति का जो शाब्द बोध होगा उनके यहाँ, उसमें ये प्रथमांतार्थ जो देवदत्त है वही मुख्य विशेष्य बनेगा, और बाकी जो है गच्छति वाले सब गम धातु का जो अर्थ है या ती प्रत्यय का जो अर्थ है ये सब विशेषण बनेगा, और मुख्य विशेष्य जो बनेगा वह प्रथमांतार्थ अर्थात देवदत्त बनेगा। इसको अगर हम शाब्द बोध की भाषा में कहें तो देखिए, गम गच्छति में गम धातु है, गम धातु का अर्थ हो गया संयोगानुकूल व्यापार, और गच्छति में ती प्रत्यय है तो ती प्रत्यय का अर्थ नैयायिक लोग कृति मानते हैं। मैं पहले भी मैंने कभी बताया होगा, कृति माने यत्न प्रयत्न जिसको कहते हैं। तो गम धातु का अर्थ हो गया संयोगानुकूल व्यापार, और ती का अर्थ हो गया कृति। अब संयोगानुकूल व्यापार जो धातु का अर्थ है उसका अन्वय करेंगे ती प्रत्यय के अर्थ कृति में, वह जो अन्वय करेंगे किस संबंध से करेंगे? अनुकूलत्व संबंध से अन्वय करेंगे। तो इसमें एक अनुकूल जोड़ दीजिए बीच में, संयोगानुकूल व्यापार अनुकूल कृति, इतना जो अर्थ हो गया ये हो गया गच्छति का। अब यहाँ जो कृति तक हमने बिठा लिया, संयोगानुकूल व्यापार अनुकूल कृति, ये हो गया गच्छति का अर्थ। अब ये गच्छति विशेषण बनेगा किसमें? प्रथमांतार्थ जो देवदत्त है उसमें विशेषण बनेगा। तो इसको विशेषण बनाने के लिए उसमें मान लगा देंगे, कृति में लगा देंगे मान, तो क्या होगा? कृतिमान। तो अब क्या हो गया, इस मान को ना बदले आश्रय भी कह सकते हैं, कृतिमान के बदले कृत्याश्रय देवदत्त अथवा कृतिमान देवदत्त, दोनों तरीके से बोला जाता है। तो हमने मान लगा करके बोला, तो अब क्या पूरा बन गया कि धातु का अर्थ हो गया संयोगानुकूल व्यापार, ती का अर्थ हो गया कृति है, तो और कृति में जो अन्वय होगा संयोगानुकूल व्यापार का वो अनुकूलत्व संबंध से, तो हो गया संयोगानुकूल व्यापारानुकूल कृति। और इसको विशेषण बनाना है देवदत्त में प्रथमांतार्थ में, तो मान लगा देंगे, तो क्या हो गया पूरा? संयोगानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान देवदत्त। इस तरह से जो है शाब्द बोध होता है किनको? नैयायिकों को, क्योंकि नैयायिकों में जो आचार्य परंपरा से संस्कार बैठा हुआ है उस संस्कार के कारण उनको प्रथमांतार्थ जो देवदत्त है उसी को मुख्य विशेष बना करके उनको शाब्द बोध हुआ करता है। और हमारी जो व्युत्पत्ति है, हमारे में जो संस्कार बैठा हुआ है उसके अनुसार जो है व्यापार मुख्य विशेषक शाब्द होगा। तो कैसे होगा कि देवदत्त क्या है यहाँ पर? कर्ता है, तो देवदत्त कर्तृकः। और ये जो धातु का अर्थ क्या है? संयोगानुकूल व्यापार, और तो देवदत्त कर्तृकः संयोगानुकूल व्यापारः, ये मुझे बोध होगा क्योंकि इसमें मुख्य विशेष कौन हुआ? व्यापार हुआ। तो देखिए वाक्य वही है देवदत्तो गच्छति, लेकिन अपने अपने संस्कार के आधार पर, अपनी अपनी व्युत्पत्ति के आधार पर हम लोगों को साधबोध होता है। नैयायिक जब सुनता है देवदत्तो गच्छति तो उसको साधबोध होता है संयोगानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान देवदत्त। वैयाकरण जब सुनता है तो उसको बोध होता है देवदत्त कर्तृकः संयोगानुकूलो व्यापारः। तो इस तरह से व्युत्पत्ति के अनुसार ही जो है शाब्द बोध होता है। ये जो है प्रत्यार्थ प्रधानम वाली बात, अगर वैसी व्युत्पत्ति किसी की है तो उसको उसके लिए प्रत्यार्थ जो है विशेष बनेगा, प्रकृत्यर्थ विशेषण बनेगा, और वैसी अगर व्युत्पत्ति नहीं, वैसा संस्कार नहीं है तो वैसा नहीं होगा, ये तात्पर्य निकला। और भी उदाहरण देते हैं कि व्युत्पत्ति के अनुसार कैसे शाब्द बोध होता है। आगे उदाहरण दिया लक्षणायाम, आपने नाम सुना होगा अभिधा लक्षणा व्यंजना, और अभिधा और शक्ति एक ही चीज है, ये मैं बता चुका हूँ पहले। तो लक्षणा में लक्षणा स्थल में कैसे शाब्द बोध होता है, उसमें कौन विशेषण होता है, उसके संबंध में भी फर्क है। इसमें आलंकारिक और नैयायिक दोनों की चर्चा हुई है। आलंकारिक कहते हैं साहित्य शास्त्र को जो जानने वाले हैं उनको, अलंकार शास्त्र साहित्य शास्त्र को ही कहते हैं। तो साहित्य पढ़ने वाले या जानने वाले जो हैं वो हो गए आलंकारिक, और नैयायिक आप जानते हैं न्याय दर्शन पढ़ने वाले जानने वाले। तो आलंकारिक अलग टाइप का शाब्द बोध मानते हैं लक्षणा में, और नैयायिक जो हैं अलग टाइप का शाब्द बोध मानते हैं लक्षणा में। क्यों जी क्यों मानते हैं, क्योंकि लक्षणा का वाक्य तो दोनों के लिए एक ही टाइप का है, क्यों ऐसा होता है? तो वही व्युत्पत्त्यनुसार ही बोधा, अपनी अपनी जैसी सोच है, अपनी अपनी जैसी व्युत्पत्ति है, उनके ऐसा ही उसका शाब्द बोध होता है। चलिए भाषणबाजी बहुत हुई, अब टू दी पॉइंट बात करते हैं कि लक्षणा का एक जो है ना उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण ले लिया, मान लीजिए हमने सिंहो मानव कहा, गंगायाम घोषा, तो चलिए गंगायाम घोषा की कई बार बात हो चुकी है, तो हम सिंहो मानव का को ले लेते हैं। अब सिंहो मानव का में सामान्य दृष्टि से गौर करिए, सिंह मानवक, मानवक कहते हैं बच्चे को, कि बच्चा जो है वह सिंह है। अब बताइए कि बच्चा सिंह कैसे होगा, सिंह नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सिंघा का की लक्षणा के द्वारा सिंघा का अर्थ करते हैं सिंह सदृश, तो अब सिंहो मानव का अर्थ होता है सिंह सदृशो मानव का, ये मानवक कैसा है, तो सिंह सदृश है। यहाँ पर सदृश अर्थ जो है को बताने के लिए कोई शब्द नहीं है, तो जहाँ पर किसी अर्थ को बताने के लिए शब्द नहीं रहता है वहाँ लक्षणा का सहारा लिया जाता है। तो यहाँ पर सिंहो मानव का में सदृश अर्थ को बताने के लिए कोई शब्द नहीं है, तो लक्षणा वृत्ति के द्वारा, लक्षणा के द्वारा हम सदृश अर्थ ले आएंगे और सिंहो मानव का अर्थ कर लेंगे सिंह सदृशो मानव का, ठीक है। तो सिंहो मानव का या लक्षणा का उदाहरण हुआ, और इसमें लक्षणा में जो लक्ष्य अर्थ हुआ, जैसे अभिधा में वाच्यार्थ होता है ऐसे ही लक्षणा में लक्ष्यार्थ होता है। तो यहाँ जो लक्ष्यार्थ है सिंघा का वह क्या हुआ, सिंह सदृश। और दूसरे टाइप से देखें तो सिंघा का लक्ष्यार्थ होगा सिंहत्ववान। अब सिंहो मानव के, मानव का दो तरह का शाब्दबोध, एक हो गया सिंहत्ववान मानव का, दूसरा हुआ सिंह सदृशो मानव कहा। इसमें सिंहत्ववान, सिंहत्ववान समझते हैं ना, सिंह में रहने वाला जो त्व माने धर्म, वो हो गया सिंहत्व। वह धर्म क्या है, सिंह में क्या रहता है, शौर्य रहता है, वीर्य रहता है, पराक्रम रहता है, यही हुआ सिंहत्व, माने सिंह में रहने वाला धर्म। और सिंहत्ववान, बान माने युक्त, तो सिंहत्व से युक्त मानवक, ये अर्थ हुआ सिंहत्ववान मानव कहा, ठीक है। और सिंह सदृशो मानव का ये तो समझ ही गए कि सिंह का जो सादृश्य है उस सादृश्य से जो युक्त है मानवक, वह हो गया सिंह सदृशो मानव का। सादृश्य माने समानता, माने सिंह में रहने वाली जो समानता, उस समानता से युक्त है मानवक। तो सिंहो मानव का दो तरह का शाब्दबोध हुआ, एक हुआ सिंहत्ववान मानव का, एक हुआ सिंह सदृशो मानव का। अब यहाँ गौर करिए, मानव का तो दोनों में विशेष्य है, विशेषण जो है इसमें कौन है, सिंहत्ववान, और उसमें है विशेषण सिंह सदृश, क्लियर। तो सिंहत्ववान मानव का में सिंहत्ववान विशेषण है, मानवक विशेष है। सिंह सदृशो मानव का जो साधबोध है उसमें सिंह सदृश जो है वह विशेषण है, प्रकार है, और मानवक जो है वह विशेष है। इसमें पहला जो है सिंहत्ववान मानव का, यह साधबोध है आलंकारिकों का, साहित्य वालों का, सिंहो मानव का से साधबोध होता है सिंहत्ववान मानव का, और न्यायिकों को सिंहो मानव का से साधबोध होता है सिंह सदृशो मानव का। इसको ना दूसरे टाइप से भी कहते हैं न्यायिक लोग, सिंह सादृश्यवान मानव का। तो सादृश्यवान का अर्थ क्या होगा, सदृश ही होगा, सदृश किसको कहते हैं जिसमें सादृश्य रहे, तो इसलिए सिंह सदृशो मानव का अथवा सिंह सादृश्यवान मानव का, यह एक ही चीज है। तो हाँ, आलंकारिकों को जो है सिंहत्ववान मानव का बोध होता है, न्यायिकों को सिंह सादृश्यवान मानव का यह बोध होता है। अब इसमें प्रकार जो है सिंहत्ववान में वह कौन है, सिंहत्व, सिंहत्ववान मानव का में प्रकार कौन है, सिंहत्व, और सिंह सादृश्यवान मानव का में प्रकार कौन है, सिंह सादृश्य। तो अब देखिए कि सिंहत्व और सिंह सादृश्य में क्या अंतर है, सिंहत्व जो है यह संघ यह सक्यता वच्छेदक है, और सिंह सादृश्य जो है यह लक्ष्यता वच्छेदक है। तो मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, पहले ये समझाया कि सिंहो मानव का लक्षणा का उदाहरण है, इसका इसके दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है सिंहत्ववान मानव का, दूसरा अर्थ होता है सिंह सादृश्यवान मानव का। सिंहत्ववान मानव का जो है आलंकारिकों के मत में है, और सिंह सादृश्यमान मानव का जो है वह न्यायिकों के मत में है। ठीक है, यहाँ तक तो सेट हो गया। अब सिंहत्ववान मानव का में प्रकार कौन है, तो सिंहत्व है, और सिंह सादृश्यवान मानव का में प्रकार कौन है, तो सिंह सादृश्य प्रकार माने समझते हैं ना विशेषण। ठीक, अब आ जाइए कि ये सिंहत्व अर्थ और सिंह सादृश्य अर्थ में क्या मौलिक अंतर है। मौलिक अंतर ये है कि सिंहत्व जो है वह है सकतावच्छेदक और सिंह सादृश्य जो है वह है प्रकारता, वह है लक्ष्यतावच्छेदक। तो सिंहत्ववान मानव का में सकतावच्छेदक हो गया सिंहत्व, यह प्रकार है। सिंह सादृश्यवान मानव का में लक्ष्यतावच्छेदक हो गया सिंह सादृश्य, वह प्रकार है। तो न्यायिकों के यहाँ लक्ष्यतावच्छेदक प्रकारक बोध होता है लक्षणास्थल में, और आलंकारिकों को सकतावच्छेदक प्रकारक बोध होता है लक्षणास्थल में। ये क्यों होता है, क्योंकि व्युत्पत्त्यनुसार ही बोधा। इसी बात को अब ग्रंथ में देखिए, लक्षणायाम आलंकारिकानाम सकतावच्छेदक प्रकारक एव बोधा। लक्षणायाम माने लक्षणास्थल में सिंहो मानव का इत्यादि में आलंकारिक जो है उनको कैसा बोध होता है, तो सकतावच्छेदक प्रकारक बोध होता है। जैसे सिंहो मानव का में उनको बोध होता है सिंहत्ववान मानव का, तो सकतावच्छेदक कौन है, सिंहत्व। सकतावच्छेदक है प्रकार जिस बोध में, वह बोध कौन है, सिंहत्ववान मानव का यह बोध। तो ऐसा बोध होता है सकतावच्छेदक प्रकारक बोध। नौ न्यायिकाधिनाम, न्यायिकों को जो है ना ऐसा बोध नहीं होता है। उनको कैसा बोध होता है, लक्ष्यतावच्छेदक प्रकारक बोध होता है। तो उनका बोध कैसा है, सिंह सादृश्यमान मानव का। इसमें लक्ष्यतावच्छेदक कौन है, सिंह सादृश्य है, वही प्रकार के रूप में वहां पर भाषित होता है। थोड़ा सा संक्षेप में यहां समझ लीजिए, आप लोग ऐसे पहले जान चुके हैं, ये सकतावच्छेदक लक्ष्यतावच्छेदक होता क्या है। तो देखिए, जिसमें शक्ति रहेगी और जिसमें लक्षणा रहेगी, ठीक है। तो शक्ति के द्वारा या अविधा के द्वारा जो अर्थ निकलता है उसको शक्य कहते हैं, और लक्षणा के द्वारा जो अर्थ निकलता है उसको लक्ष्य कहते हैं। तो ये तो हुआ शक्य और लक्ष्य। शक्ति के द्वारा जो अर्थ निकला वो हुआ शक्य, लक्षणा के द्वारा जो अर्थ निकला वो हुआ लक्ष्य। अच्छा, शक्य में शक्यता रहेगी और लक्ष्य में लक्ष्यता रहेगी, क्योंकि शक्य में रहने वाला जो धर्म है वो शक्य में ही रहेगा, लक्ष्य में रहने वाला जो धर्म है वो लक्ष्य में ही रहेगा। तो शक्य और लक्ष्य का समझ गए, शक्ति से निकलने वाला अर्थ हो गया शक्य, लक्षणा से निकलने वाला अर्थ हो गया लक्ष्य। शक्यता रहेगी शक्य में, लक्ष्यता रहेगी लक्ष्य में। शक्यता का जो अवच्छेदक होगा वो हुआ शक्यतावच्छेदक, लक्ष्यता का जो अवच्छेदक होगा वो हो गया लक्ष्यतावच्छेदक। अब आ जाइए सिंहो मानव का में, सिंहो मानव का में सिंह शब्द जो है इसमें शक्ति के द्वारा क्या अर्थ निकलता है, सिंह, यह हो गया शक्य। सिंह का शक्य क्या हुआ, सिंह। और शक्यता किसमें रहेगी, सिंह में रहेगी। उसमें शक्यता का अवच्छेदक कौन होगा, तो सिंह में अवच्छेदक सिंहत्व होगा। तो सिंहत्व जो है यहाँ शक्यतावच्छेदक है, और सिंहत्ववान मानव का यह जो बोध है इसमें प्रकार जो है वह सिंहत्व ही होता है। तो इस तरह से शक्यतावच्छेदक प्रकारक बोध होता है। अब न्यायिकों के यहाँ चलिए, लक्षणा के द्वारा सिंह से क्या अर्थ निकलता है, तो सिंह सादृश्यवान ये अर्थ निकलता है। इसमें तो लक्ष्य हो गया सिंह सादृश्यवान, लक्ष्यता किसमें रहेगी, सिंह सादृश्यवान में। लक्ष्यता का अवच्छेदक कौन होगा, तो सिंह सादृश्य। तो उनके बोध में सिंह सादृश्य ही प्रकार होगा। तो इस तरह से आलंकारिकों को सकतावच्छेदक प्रकारक बोध होता है, न्यायिकों को लक्ष्यतावच्छेदक प्रकारक बोध होता है लक्षणास्थल में। यह भी जो बोध होता है वो व्युत्पत्ति के आधार पर होता है, अपने अपने संस्कार के आधार पर होता है। तो आज का पाठ यहीं पर छोड़ दें।